تفسير. سورة حاميم سجدة مکی سورت ہے، اس کے 6 رکوع اور 54 آیات ہیں. الفاظ اور کلمات کی تعداد 809 جبکہ حروف 3406 ہیں 3406. اس سورت کا حامیم سجدہ کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے فصلت. فصلت یعنی تفصیل سے. اصل مضامین کو فصل فصل کر کے ممتاز کر دینا، کھول دینا، کھول کر وضاحت سے بیان کرنا. اور اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، سورت المصابیح. مصباح چراغ کو کہتے ہیں اور المصابیح جو ہے یہ اس کی جمع ہے. یہ سورت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی. اس سورت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے بہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے سد باب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے. چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربوں میں انتشار پیدا کرنے کا الزام لگایا اور پیشکش کی کہ اگر آپ اس نئی دعوت جو ہے اس کے ذریعے سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے مال و دولت کے ڈھیر جمع کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ لیڈری یا قیادت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں. اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا ہم انتظام کر دیتے ہیں. اور اگر آپ پر کوئی جو ہے وہ اسیب کا اثر ہے، کوئی جن بھوت یا جادو کا اثر ہے تو جس کی وجہ سے آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کی تمام باتیں غور سے سنی اور اس کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی جس سے وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے واپس جا کر قریش کے سرداروں کو کہا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ نہ تو جادو ہے اور نہ ہی کہانت اور نہ ہی شعر و شاعری. وہ یہ چاہتا تھا کہ باقی جو مکہ کے سردار ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور و فکر کریں. اور عتبہ نے جو ہے وہ مکہ کے سرداروں سے کہا کہ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا. فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آگے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اسے نمٹ لیں گے. لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی. سرداران قریش اس کی یہ بات سن کر بول اٹھے کہ ولید کے ابا یعنی عتبہ بن ربیعہ جو ہے اسے کہنے لگے ابو الولید، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا. عتبہ نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو چیز ہے کرتے رہو. تو یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت ابن حشام میں بھی ہے اور دوسری سیرت کی کتابوں میں، اور اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے कि उत्बा बिन रबिया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आपसे कंप्रोमाइज करना चाहा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने जो है ये सूरत तिलावत की। इस सूरत का इब्तदाई हिस्सा उसके सामने पेश किया। बड़ा ही खूबसूरत इसका अंदाज है। और आपको मैंने जो है जब हमने ये सूरत अलमोमिन का जब आगाज किया था, तो मैंने उस वक्त आपके सामने ये बात भी रखी थी कि जो है कि 7 सूरतें हैं अलमोमिन से अहकाफ तक, जो सबा हवामीम या आले हामीम या हवामीम कहलाती हैं। तो ये अब इस सिलसिले की ये दूसरी सूरत है जिसे हामीम सजदा कहते हैं। और इन सब सूरतों की निशानी क्या है कि इनके आगाज में हामीम आता है और फिर साथ में दूसरा लफ्ज मिलाया जाता है। हामीम ये हरूफे मुकद्दाआत में से है। तंजीलुम मिनर रहमान रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबी कौमे यालमून बशीरा व नजीरा फआरदा अक्सरहुम फहुम ला यस्माउन। पहली 4 आयात में कुरान मजीद की 4 सिफात जो है वो बयान की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े ही मुख्तसिर लेकिन जामे अंदाज में बताया कि तंजीलुन कुरान मजीद जो है ये नाजिल किया गया। और आप तंजील के मानी पहले भी पढ़ चुकी हैं कि नून जा लाम जो है, और तंजील के मानी है कि थोड़ा थोड़ा करके एहतमाम और शानो शौकत के साथ नाजिल करना। यानी तंजील में 3 चीजें हैं। नंबर 1 एहतमाम, दूसरा दर्जा बदरजा यानी तदरीज, और तीसरा बड़ी बड़े शानो शौकत के साथ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को बड़े एहतमाम के साथ, जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक बड़ी शानो शौकत के साथ नाजिल किया है। तंजील ये तफील के वजन पर है। मिनर रहमान रहीम ये खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला की 2 सिफात का तारुफ करवाया गया है कि अर्रहमान अल्लम अल कुरान, बहुत ज्यादा रहम करने वाले ने जो है वो अपने बंदों के लिए कुरान को एहतमाम के साथ नाजिल किया है। तो कुरान अजीम रहमत है, लोगों इस पर ईमान ले आओ। दुनिया में बहुत सी नेमतें हैं लेकिन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और जो है वो अजीम नेमत ये कुरान मजीद की नेमत है। दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हों, अगर कुरान की हदायत की नेमत मौजूद ना हो तो फिर उन नेमतों की कोई कदरो कीमत नहीं है। और अगर इंसान जो है वो दुनिया से चला जाए और इस नेमत से महरूम हो तो फिर बाद की जिंदगी में भी उसके लिए अंधेरे हैं। तो तंजीलुम मिनर रहमान रहीम ये खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल करदा किताब है। सिफ्त नंबर 2 किताबुन फुस्सिलत, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयात खूब खोलकर बयान की गई हैं। किताबुन फुस्सिलत, इस किताब में अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ मजामीन को खोल खोल कर बयान किया है। मसलन क्या हलाल है और क्या हराम, सवाब वाले काम कौन से हैं और अजाब वाले कौन से हैं, अकायद किस्से कहानियां और तौहीद और शिर्क का फर्क अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान किया है। मुख्तलिफ मजामीन को अलग अलग मुख्तलिफ मिसालों से बयान किया है। बाज मिसालें मिलती जुलती हैं, बाज मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने सूरत हूद की पहली 2 आयतें, सूरत अलनाम में भी, सूरत यूसुफ की आयत 2 में ये सारे बताया है कि कुरान मजीद कैसे अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से नाजिल किया है। कुरान की सिफ्त नंबर 3 अरबियन, कुरान मजीद जो है ये अरबी जबान का कुरान है। ये कौम यालमून एक ऐसी कौम के लिए जो इल्म रखती है, जो इल्म रखने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने अरबी जबान में इसको नाजिल किया, और अरब लोग थे और अरबी जबान में इसलिए नाजिल किया ताकि वो कुरान को समझ सकें और फिर हदायत हासिल करें। वो ये ना कहें कि हम अरब हैं और कुरान किसी और जबान में है और हमें समझ ही नहीं आता, तो हम इस पर अमल कैसे करें। कुरानन अरबी यल्ले कौम यालमून, आयत नंबर 4, बशीर व नजीरा, कुरान मजीद बशारत देने वाला और डराने वाला है। ये है कुरान मजीद की चौथी सिफत कि ये जो है वो डराता है। किन लोगों को डराता है? जो बुरे काम करते हैं तो उन्हें खबरदार करता है कि अल्लाह की पकड़ से बचो और जहन्नुम से अपने आप को बचाओ। खुशखबरी किन्हें देता है? बशीरन, खुशखबरी किसे देता है? जो कि अच्छे काम करते हैं तो उन्हें निहायत शानदार मुस्तकबिल की खुशखबरी देता है। तो पहले बशीरन है और फिर नजीरन है। तो पहले कुरान मजीद जो है ये खुशखबरी देता है कि जो कबूल कर लेंगे कुरान की दावत को, इनके लिए दुनिया और आखरत दोनों में फौजो फलाह की खुशखबरी है, और जो इनकार करेंगे तो इनके लिए जो है वो अजाबे इलाही जो है उसकी खबर है। तो याद रखो लोगों, ये कुरान सबसे बड़ी रहमत है। अगर इसको कबूल करोगे तो दुनिया भी बन जाएगी और आखरत भी, और अगर इसका इनकार करोगे तो इसे मामूली ना समझना। अगर तुम इनकार करोगे तो फिर आगे बड़ा ही हौलनाक इसका रिजल्ट तुम्हें देखना पड़ेगा। फआरदा अक्सरहुम फहुम ला यस्माउन, मगर इनमें से अक्सर लोगों ने एराज बरता, मगर इनमें से अक्सरियत ने मुंह फेर लिया। फहुम ला यस्माउन, और वो सुनते ही नहीं। अब आप देखें कि आयत नंबर 3 के आखिर में कहा था अल्लाह ताला ने कि ले कौम या लमून, इल्म रखने वाली कौम के लिए कुरान फायदा देगा ना। इल्म रखने वाली कौम के लिए कुरान फायदा देगा ना, वो लोग जो कि सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। और अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बजाय ये गौर व फिक्र करते, ये अपनी अकल से काम लेते कि इन्हें फायदा होता, लेकिन इन्होंने मुंह फेरा। फहुम ला यस्माउन, ये सुनते ही नहीं। और आप देखें कि जो सुनता है तो हो सकता है कि उसे हदायत मिल जाए, और जो अच्छी महफिलों में आता ही नहीं, कुरान सुनता ही नहीं, तो वो तो हदायत से कोसों दूर है, उसे हदायत कैसे मिल सकती है? अब अहले मक्का ने जो है कुरान मजीद के खिलाफ क्या रवैया इख्तियार किया? आप देखें यहाँ पे अहले मक्का के तीन रवैये सामने आते हैं आयत नंबर 5 में। नंबर 1, फकालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन, उन लोगों ने, इनकार करने वालों ने कहा कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं। फकालू कुलूबुना, उन्होंने कहा कि हमारे दिलों पर क्या है, फी अकिन्नतिन, पर्दे में है। काफ नून नून इसका रूट है और इसकी जमा है अकनान, वाहिद अकिन्ना, हिफाजती पर्दे, जगहों को भी कहते हैं। कन्ना शई, किसी चीज को महफूज मकाम में छुपाना, धूप से बचाना। कन्ना फी नफसे, किसी बात को दिल में छुपाना। तो कहीं भी कोई छुप कर कहीं बैठ जाए किसी जगह में तो उसको भी अकिन्ना कहते हैं, जैसे गार वगैरह में पनाह ले ली, और अगर दिल में कोई चीज छुपा ली जाए तो उसको भी अकिन्ना कहते हैं। तो अहले मक्का ने कुरान पर ईमान लाने की बजाय कहा कि हमारे दिलों पर तो पर्दे चढ़े हुए हैं, कुलूबुना फी अकिन्नतिन, गिलाफ चढ़े हुए हैं, पर्दे चढ़े हुए हैं। इसके मानी ये हैं कि हमारे दिलों तक कुरान नहीं पहुंच सकता क्योंकि हमने कवर किया हुआ है अपने दिलों को। मिम्मा तदऊना इलेही, जिस चीज की तरफ तू हमें बुला रहा है, यानी तू जो हमें दावत देता है, तो वो हम तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि हमने जो है अपने दिलों को बंद कर लिया है। توحید اور آخرت کی دعوت یہ ہمارے دل پر اثر نہیں کر سکتی. تو اس لیے انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ جو ہے یہ بات کہی, کیونکہ انہوں نے اعراض کیا تھا, منہ پھیرا تھا اور سننا نہیں چاہتے تھے, اور یہ وجہ بھی بتائی. آپ پیچھے سورت بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کالو قلوبنا غلف, اور یہاں پہ غلف کی بجائے جو ہے اکنہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی, جو ان کا دوسرا رویہ تھا, وفی آذاننا وقرن, کہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں. وقرن یہ اسم مصدر ہے اور اس کے معنی ہے جیسے کانوں کے اندر میل, جیسے کانوں کے اندر میل ہوتی ہے تو پھر آپ سن نہیں پاتے نا, جیسے بوجھ کے لیے بھی استعمال یہ لفظ کیا جاتا ہے. دو چیزوں کے درمیان یوں پردہ کر دینا کہ ایک چیز دوسری کو دیکھ نہ سکے اور اس تک پہنچ نہ سکے. تو دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ وفی آذاننا وقرن, کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کی دعوت ہے وہ ہمارے کانوں سے اندر نہیں جاتی, یعنی ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے, ہمارے کانوں میں میل ہے, اس کی وجہ سے ہم حق بات کو سن نہیں سکتے. تو یہ تھا ان کا دوسرا رویہ کہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں, جو تم ہمیں سنا رہے ہو ہم نہیں سننا چاہتے, جیسے کانوں میں کوئی انگلیاں دے لے, روئی ٹھونس لے. تیسرا رویہ وفی آذاننا وقرن کے بعد تیسرا رویہ, ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون. انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے. جیسے آپ جب حجاب پہن لیتی ہیں تو آپ کے جسم تک, آپ کے کپڑوں تک حجاب دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے, یعنی اس دعوت نے جو آپ نے دینی شروع کی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے. جس طرح حجاب جدائی ڈال دیتا ہے نا, کہ کسی کی نظریں آپ کے لباس تک اور آپ کی زیب و زینت تک نہیں پہنچ سکتی, تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈالی ہے, اور تمہاری دعوت ایک ایسی رکاوٹ بن گئی ہے جو ہم کو اور تم کو جمع نہیں ہونے دیتی. یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ سن نہیں سکتے, اور جو آپ کرتے ہیں اسے دیکھ نہیں سکتے. تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں, تو ہمارے دین پر نہیں چلتا, ہم تمہارے دین پر نہیں چلتے. تو تمہاری دعوت جو ہے اس نے ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے دوری کی, اختلاف کی ایک دیوار کھڑی کر دی, ایک حجاب کھڑا کر دیا. اب ہمارے آپس سے ملنے کا کوئی امکان نہیں رہا. فعمل اننا عاملون, تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا کیا جواب دیا. قل, اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, انما انا بشر مثلکم, کہ بے شک میں تو ایک بشر ہوں تم ہی جیسا, کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, اور میرے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہارے کانوں کے جو بہرا پن ہے اس کو کھول دوں, یا تمہارے دلوں پر چڑے ہوئے غلاف اتار دوں, یا اس حجاب کو پھاڑ دوں جو تم نے میرے اور اپنے درمیان ڈال لیا ہے. میں تو ایک انسان ہوں, میں تو بس تمہیں سمجھا سکتا ہوں, اور اسی کو سمجھا سکتا ہوں جو سننے کے لیے تیار ہو, اسی سے مل سکتا ہوں جو کہ ملنے کے لیے تیار ہو. قل انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ, فرق کیا ہے میرے اور تم میں؟ یوہا وہی کی جاتی ہے, الیہ میری طرف, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے. اب یہ نہیں کہا کہ میرا خدا, بلکہ یہ کہ تمہارا خدا جو ہے بس ایک ہی خدا ہے. فاستقیموا الیہ, پس تم سیدھے اس کا رخ اختیار کرو. اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا, दूसरी बात जो कही गई कि फस्तकीमु इलैही। अब आप देखें कि फस्तकीमु इलैही के क्या मानी है। इसका मतलब है अखलसु लहुल इबादा, कि तुम्हारी सारी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ हो, तुम्हारी दुआ और इबादत उसका मकसद सिर्फ एक अल्लाह हो, तुम्हारी सोच तमाम तर जो है वो अल्लाह की खातिर हो। यानी सिर्फ और सिर्फ जो है तुम अल्लाह के बन जाओ, किसी और की बंदगी नहीं करनी, किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी रस्म और रवाज, किसी और कानून को जो है उसको अपने लिए जो है वाजिबुल अतात नहीं समझना। तो फस्तकीमु इलैही, एक अल्लाह की बंदगी पर जम जाओ, सीधे उसका रुख इख्तियार करो। नंबर 3, वस्तग़फिरूहु, और उसी से माफी चाहो। अब तक जो शिर्क और कुफ्र किया, अब तक जो अल्लाह की नाफरमानी की, जो रस्म और रवाज निभाते रहे, तो उस पर अल्लाह से माफी चाहो। वैलुल लिल मुशरिकीन, और तबाही है शिर्क करने वालों के लिए। अब आप देखें कि ये जो आयत नंबर 6 है, आयत नंबर 7 है, इसमें अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहले मक्का के सामने जो है वो एक मुतालबा रखा है, और ये कहा है कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही की है कि तुम लोग बस एक अल्लाह की इबादत करो, यानी तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम सीधा उसी का रुख इख्तियार करो। नंबर 2, और नंबर 3, उससे माफी चाहो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम तबाहो बर्बाद हो जाओगे। और तबाहो बर्बादी शिर्क करने वालों के लिए है। वो कौन है? अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात, जो ज़कात अदा नहीं करते। अब आप देखें कि मक्का में तो ज़कात फर्ज नहीं हुई थी, तो फिर यहां पर क्या मतलब है कि वो ज़कात नहीं देते? तो दरअसल इसके मानी है कि ये लफ्ज जो है ये पाकीजगी के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, कद अफलाह मन जक्काहा व कद ख्वाबा मन दसाहा। तो माल और नफ्स की जकात से मुराद क्या है? पाकीजगी इख्तियार करना। तो जो लोग जकात नहीं देते, मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे जकात से मुराद पाकीजगी नफ्स है, जो तौहीद के अकीदे और अल्लाह की अतात से पैदा होती है। तो इस आयत का तर्जुमा आप ये नहीं करेंगी कि जो जकात नहीं देते मुशरिक, जो जकात नहीं देते तो मुशरिक क्या जकात देगा, बल्कि इस आयत का तर्जमा आप यूं करेंगी कि वो लोग, वो मुशरिक जो कि पाकीजगी इख्तियार नहीं करते, वो लोग जो शिर्क करके अल्लाह का हक मारते हैं। वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, और वो लोग जो हैं आखिरत के मुनकिर हैं। ये जो हुम है ना, ये जमीरे मुनफसिल है। अब आप देखें कि ये 2 दफा जमीरे जो मुनफसिल आई है हुम, ये जो है ताकीद के लिए है कि यही वो लोग हैं जो कि आखिरत का इनकार करते हैं। इन अल्लज़ीन आमनू आमिलु स्वालिहाती लहुम अजरुन गैरु ममनून, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमले स्वाले करते रहे, तो उनके लिए ऐसा अजर है जो कि गैरु ममनून, जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। मन के एक मानी तो एहसान करना, एहसान जतलाना उसके होते हैं, और दूसरे इसके मानी होते हैं थकाना, कमजोर कर देना, कम कर देना, ऊंटनी का सफर से कमजोर हो जाना, काट देना, जैसे मन्नल हबल, रस्सी को काटना, कम करना। तो यहाँ पे जो है वो ममनून के मानी है कमी के लिए यहाँ पे आया है, यानी ईमान और अमले सवाले करने वालों को अल्लाह ऐसा अजर देगा जिसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, जिसका अजर जो है कभी टूटने वाला नहीं है, यानी उनके अजर में कभी कमी नहीं आएगी। और नंबर 2, कि वो अजर जो एहसान जता जता कर नहीं दिया जाएगा, जैसे किसी बखील का अतिया होता है ना, कि अगर वो किसी को कुछ दे भी दे तो एहसान बहुत जताता है, तो मोमिन मोमिन को अल्लाह ताला जो अजर देगा तो उस पर कोई भी एहसान जो है वो नहीं जताया जाएगा। सूरत हूद में आप पढ़ चुके हैं आयत 108 में कि अल्लाह ताला ऐसी जजा देगा कि अतान गैरा मजजूज, जो कभी खत्म होने वाला जो है वो नहीं है। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक पहली बात ये बताई अहले अरब को कि अल्लाह ताला ने तुम पर कुरान नाजिल करके बड़ा एहसान किया है और तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। दूसरी बात जो कही तो उन्हें जो है वो तौहीद की दावत दी, और तीसरी बात उन्हें कयामत के दिन से डराया, और चौथी बात जो बताई वो ये कि अब तक की जिंदगी में जो भी गलतियां हुई हैं तो उस पे इस्तग़फार करो और आइंदा के लिए इस्तकामत तौहीद परस्ती जो है वो इख्तियार करो। तो प्यारी बहनों, ये पहली 8 आयात जो है ये तारुफ देती हैं, ये पैगाम देती हैं कि कुरान मजीद जो है ये बहुत बड़ी दौलत है, और यही वो आयात हैं जिसे सुनकर उतबा बिन रबिया जो है वो बहुत मुतासिर हुआ और जाकर अहले मक्का को समझाने लगा कि कुरान ना शेर है, ना सहर है और ना कहानत, और कहने लगा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाल पर छोड़ दो। और इन आयात से हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह के यहाँ जो चीज फायदा देगी वो है ईमान और अमले स्वाले। ईमान लाना और अमले स्वाले करना, ये वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल ठहरेंगे। और ईमान लाकर अमले सवाले करने के लिए फिर किस चीज की जरूरत है कि जो है वो इस्तकामत इख्तियार की जाए। एक दफा एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। फरमाया, अल्लाह की बंदगी करो, किसी को इसका साजी ना बनाओ, नमाज पूरी अदा करो, जकात दो और सिला रहमी करो। तो इससे भी क्या बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ अकायद, दूसरी तरफ इबादत और तीसरी तरफ जो है हकूकुल इबाद अदा करने का हुक्म दिया। और हमें भी अपने अकायद, अपने इखलाक, अपनी इबादतें, अपने मामलात जो है इसका जरूर जायजा लेना चाहिए कि हम जो है वो कहाँ पर खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इखलास की दौलत से माला माल करे, और मैं और आप अल्लाह को अपना वकील बनाएं, अल्लाह पर ही भरोसा करें और अपने सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह के सपोर्ट कर दें, और अल्लाह ताला मुझे और आपको सब्र की दौलत से माला माल कर दे। और सब्र जो है ऐसी साबित कदमी को कहते हैं जो कि गैर मामूली हालात के पेश आने पर इंसान इख्तियार करता है, बेचैन नहीं होता, परेशान नहीं होता, मुतलवन मिजाज नहीं होता, न शुक्री नहीं करता, और जो है वो शिकवा नहीं करता, घबराहट का शिकार नहीं होता। तो मुश्किलात को खातिर में न लाना, मुनासिब वक्त का इंतजार करना, बेकरारी ना दिखाना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना, और साबित कदमी, जिस नेकी को नेकी समझ लिया है, जिस दीन पर ईमान ले आए हैं, फिर सारी जिंदगी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसके ऊपर चलते रहना, यही जो है वो इस्तकामत है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि जिंदगी भर खुशी खुशी हम अल्लाह की अतात करते रहें, रातों के वक्त जो है वो बिस्तर को छोड़े भी, नरम गरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बंदगी करें, पैसों की हमें खुद जरूरत हो लेकिन अपनी जात पर जो है वो दूसरों को फौकियत दें, दूसरों से बहुत दुख पहुंचे, दिल बहुत जख्मी हो, बहुत अफसरदगी हो, लेकिन फिर भी दूसरों की गलतियों को माफ कर दें, ये सोचे जरूर कि अल्लाह मैं ये चाहती हूं कि आप मेरी गलतियां जो हैं वो माफ कर दें, आप मेरे गुनाहों को माफ कर दें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।